पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की कृपा से आज नंदनगढ़ नजफगढ़ के इस मंदिर प्रांगण में भगवत गीता के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के छठा अध्याय जिसको ध्यान योग कहते हैं उसके 45वें श्लोक का आज श्रवण वर्णन करेंगे। ध्यान योग का मतलब है मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करना। भगवान कहाँ है बोले भगवान हृदय में। तो ध्यान योग के लिए कौन सा हमारा अंग सेवा में लगता है? सूक्ष्म शरीर का अंग मन सेवा में लगता है। ध्यान मन से होता है। चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते। जो चित्त वृत्ति का निरोध मन की एकाग्रता को योग कहते हैं पतंजलि के योग सूत्र में। तो योग की दो अवस्थाओं का वर्णन है, एक योग आरूढ़ और दूसरा योग आरुरुक्ष। एक योग को पहुंच गया और एक योग के रास्ते में है। तो जो रो योग के रास्ते में है, जिसने योग को पूरा मंजिल नहीं प्राप्त किए, योग की परिकाष्ठा के ऊपर नहीं पहुंचा है और बीच में ही कहीं उसके योग छूट जाए, तो शुरू किया घर से निकले वृंदावन के लिए, रास्ते में कहीं रुक गए नहीं पहुंचे, ऐसे योग शुरू किया भगवान के दर्शन के लिए लेकिन उससे पहले शरीर छूट गया तो क्या होगा, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है। तो भगवान ने कहा अर्जुन कल्याण कृत दुर्गतिम, जो कल्याण का कार्य करेगा अपने उसकी तो कभी दुर्गति होती नहीं है, तात उसका कभी अहित तो होता नहीं है, तो क्या होगा उसका? बोला योग में भ्रष्ट हो गया, योग पूरा नहीं हो गया, बीच में रह गया, तो उसकी दो अवस्थाएं हैं। एक जिसने योग किया था 10-5 50-60% योग किया और फिर भोग के कारण योग छूट गया। तो भगवान कहते हैं उसको, पहले तो मैं स्वर्ग में बहुत सारे भोग दे देता हूं कि दोबारा ये भोग में फंसे नहीं, और फिर वहां पर जब धरती पे आता है किसी श्रीमतान, कोई बड़ा धनवान श्रीमतान, सुचिनाम का मतलब जिसके घर में पवित्र धन है, वो बेईमानी वाला नहीं, दो नंबरी धन नहीं, श्रीमतान श्री सुचिमनाद श्रीमतान सुचिनाम गेह योग भ्रष्टो अभिजायते। और दूसरी गति जिसका 90% योग का अभ्यास हो गया था, 10% रह गया किसी कारण से, वो क्या हुआ, बोला भोग नहीं लेकिन कोई शारीरिक परेशानी हुई कि पूरा नहीं हो पाया, तो उसका क्या होगा, अथवा योगिनाम कुले भवती धीमताम, वो किसी योगी के कुल में, और योगी कैसा, बोला बुद्धिमताम बुद्धिमान, बुद्धिमान योगी के घर में कुल में जन्म लेगा। तो कुछ लोग कहते हैं योगी तो सन्यासी होते हैं, उनका बच्चे कहां से पैदा होंगे, तो बोला नहीं, गुरु के कुल में, योगी के कुल में का मतलब है जैसे गुरु कुल में जाता है बच्चा तो उसके लिए पिता है, जैसे जो भी आप कृष्ण भावना अमृत संघ में आए हो ये श्रीला प्रभुपाद जी का कुल है, तो उनको ऐसे महान किसी भगवान के परम भागवत पुरुष के परंपरा में सेवा का शुभ अवसर मिलेगा। बोला इसके बाद क्या होगा, तब कहते इसके बाद जब दोबारा जन्म होगा तो फिर वो वेद के बताए हुए रास्ते के कर्म कांड में फंसेगा ही नहीं, उसका अतिक्रमण कर देगा और जो काम जहां छोड़ा था वहां से आगे बढ़ाएगा। फिर क्या करेगा, तब ये श्लोक आता है, फिर क्योंकि पहले एक बार रास्ते में संकट आ गया, विघ्न पड़ गया, तो अभी बड़ा सावधान है, तो आइए श्लोक का पाठ कीजिए। प्रयत्नाद यतमानस्तो योग संशुद्धक विषय अनेक जनम संसिद्ध ततो याति परां गते। प्रयत्नाद यतमानस्तो योगी संशुद्धक विषय अनेक जनम संसिद्ध ततो याति परां गते। तो इसमें दो शब्द है, प्रयत्नाद और यतमानस। प्रयत्नाद का अर्थ है प्रयत्न करना, प्रयत्न करना मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना, और यतमानस का अर्थ है नीचे गिरने से बचने का यत्न करना। दो शब्द साथ में बोले हैं, आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है उसके लिए प्रयत्नशील होगा, वो तो पहले भी था लेकिन पहले यत्न नहीं किया इसलिए गिर गया, तो अभी यत्नशील हो जाएगा। यत्नशील होना का मतलब सावधान होना, और वैसे यति कहते हैं जिसकी इंद्रियां संयम में हो उसको कहते हैं यति, साधु सन्यासी को यति कहते हैं, जति जति सती बोलते हैं, स्त्री होगी तो सती और पुरुष होगा तो जति, इसका मतलब जिसकी इंद्रियां संयम में है, तो प्रयत्नाद यतमानस तो फिर वो बड़ा प्रयत्न करेगा कि अब तो ये जन्म नहीं गंवाना है, अब तो भगवान को पाना है, और पहले कोई गलती के कारण हमारा बीच में रुकावट पड़ गई थी तो अब प्रयत्न करेंगे कि फिर वापस कहीं न भोग की तरफ भागेंगे और न ही कहीं आलस करेंगे। तो ये दो बात हो गई, तो फिर क्या मिलेगा इसको, योगी ऐसा योगी जो भगवान के साथ जुड़ना चाहता है मिलना चाहता है, समसिद्ध सम्यक शुद्ध, ये शब्द शुद्धि नहीं है, शुद्धि है, शुद्ध सम शुद्ध, सम का मतलब सम्यक, सम्यक मतलब पूरी तरह, और शुद्ध का मतलब पवित्र हो जाएगा। इसका मतलब जीवन में पवित्र आदमी कब होता है, जब प्रयत्नशील होता है और यत्नशील होता है, इंद्रियों को संयम में रखता है और साधन को दृढ़ता से करता है तो पवित्रता आती है। तो हर एक भक्त के जीवन में प्रयत्न भी होना चाहिए और यत्न भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें किस क्या करती हैं, शुद्धि करते हैं। किसकी कल्पशः, कल्पशः कहते हैं जो भी पाप है, जिस कारण से पहले काम रुकावट हो गई थी, भोग आ गया या इंद्रिय तृप्ति आ गया या कोई पाप का कारण बन गया, तो अब उसका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। बोला कितना अच्छा टाइम लगेगा, तब कहते अनेक जन्म संसिद्ध, ये बहुत जन्म में प्रयास करेगा तब शुद्ध होगा। अब आप यहां देखिए बड़ा आश्चर्य, ज्ञानियों के लिए सातवें अध्याय में लिखा है बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरा शरण लेगा। योगियों के लिए लिखा है अनेक जन्म संसिद्ध, उसको भी बहुत जन्म लेना पड़ेगा। आप आश्चर्य देखो, ज्ञानी को भी जन्म लेना पड़ रहा है, योगी को भी जन्म लेना पड़ रहा है, और भक्त के लिए भगवान ने कह दिया क्या कह दिया, समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामीन चिरात पार्थ। अर्जुन चिरकाल नहीं तत्काल भव सागर से मैं अपने आप उसको निकाल लूंगा। बहुत जन्म क्या, एक जन्म नहीं। अब देखो ये तुलना करें तो ज्ञान की, योग की और भक्ति की, ज्ञान ध्यान और भक्ति की तुलना, ज्ञान वाले को बहुजान बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, योग वाले को अनेक जन्म संसिद्धि स्थितो याति परम गति, तब जाके परम गति को प्राप्त करेगा, तब जाके ब्रह्म को प्राप्त करेगा। वैसे ये योग का अभ्यास करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वैकुंठ तक जा सकते हैं, ये वैकुंठ तक जा सकते हैं, लेकिन कब, बहुत जन्मों के बाद। बोला भक्त को कितना टाइम लगेगा, तब तो भगवान ने कहा मृत्यु संसार सागरात भवामी निचरात, मृत्यु संसार से मैं समय लगाने ही नहीं दूंगा। तत्काल समुद्रता का मतलब ऐसे उद्धत रूप रहूंगा, ऊपर ऊपर से उठा लूंगा उसको, तो भीगने ही नहीं दूंगा उसको, तो मैं तत्काल अपने आप उठा लूंगा मृत्यु संसार सागरा से। किसको, बोला जिसका चित्त मुझ में आसक्त है, मैं आसक्त चेत सां, जिसका चित्त मुझ में आसक्त है, इसका अर्थ है जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे प्रेम करता है उसको कई जन्म लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसी जन्म में आऊंगा और अपने हाथ से पकड़ के ले जाऊंगा। तो ये तुलना आत्मिक तीनों साधनों को देखेंगे तो बहुत बड़ा सरल साधन है। तो इस श्लोक का तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो योगी किसी कारण से असफल रहा अब बड़ा प्रयत्न करेगा, यत्नशील रहेगा और बहुत जन्मों के बाद पाप कर्मों से पवित्र शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त करेगा, ये इसका अर्थ हो गया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं तीन यहां शब्द लिखे हैं, जो व्यक्ति किसी बहुत बड़े भाग्यशाली धनवान घर में पैदा हुआ है जो धर्मात्मा है, या किसी पवित्र साधु के घर में पैदा हुआ है, तो फिर उसको योग का साधन करने का वातावरण अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि घर के अंदर सब पूजा पाठ की सामग्री होगी जिसके घर में पैदा हुआ। जैसे प्रभुपाद जी स्वयं अपने इस श्लोक या और अन्य श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, हमको और हमारे गुरुदेव को, यानी प्रभुपाद जी अपने लिए कहते हैं और अपने गुरुदेव के लिए कहते हैं, हमारे को ऐसे भगवान के भक्तों के घर में जन्म मिला जहाँ हमको भक्ति करने का प्रयास नहीं करना पड़ा, बचपन से ही घर में भगवान की पूजा होती हुई मिली, साधु संतों का संग मिला, हरि कथा कीर्तन मिला, ऐसे प्रभुपाद जी तो ये तो भगवत धाम से आए हैं, फिर भी बहुत निम्रता से अपना उदाहरण दिया है। कि हमको ऐसा शुभ अवसर मिला, जैसे आज बच्चे जो हमारे घरों में भक्तों के पैदा होते हैं तो बचपन से उनको खान पान में शुद्ध भगवान का प्रसाद मिल जाता है, और सुबह सुबह माता अगर जाती है, पिता जाता है मंदिर में, तो बच्चे को पता भी नहीं है तो नींद में उठा के जाते हैं, मंगल आरती में बिना मुफ्त में चला जाता है। कभी वृंदावन जाते हैं तो बच्चा आप रहे आप चला जाता है, आप देखेंगे आप तो 25 साल तक नहीं गए, लेकिन बच्चा आपका 5 साल का गया, 2 साल का भी जा रहा है, 1 साल का भी जा रहा है, तो उसको तो ये सब लाभ मिल रहा है ना। तो जो भक्तों के घर में पैदा होता है उसको तो लाभ मिल जाता है, तो ये लाभ मिल जाता है उनको, और इस लाभ को वो अगर ठीक तरह लेगा तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, और फिर परम गति भगवत भावना कृष्ण भावना में स्थित हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद जी 7वें अध्याय का एक श्लोक को उद्धृत करते हैं, ये शाम तो अनुसगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंदनो अनुमुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। ये शाम अंतगतम पापम, जिनके पापों का क्षय हो गया, नाश हो गए, समाप्त हो गए, और क्या हुआ, जनानाम पुण्य कर्म नाम, जिन लोगों के पुण्य का उदय हो गया, पाप नाश हो गए, पुण्य का उदय हो गया, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, वो संसार से द्वंद्वों से विशेष रूप से मुक्त हो जाते हैं, मेरे तेरे से मुक्त हो जाते हैं, काले गोरे से मुक्त हो जाते हैं, दुख सुख से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मान अपमान से मुक्त हो जाते हैं, सर्दी गर्मी से मुक्त हो जाते हैं, हर समय द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, तो क्या हो रहा, भजन ते माम, मेरा भजन करते हैं। भजन करने का मतलब होता है सेवा, भजन शब्द का अर्थ है सेवा। जब कहीं देवता के लिए होगा तो यजन होगा, और भगवान के लिए होगा तो भजन होगा। आप दो श्लोक देखेंगे आगे 7वें 9वें अध्याय में, जहां देवताओं की पूजा है यजन ते माम, लेकिन जहां भगवान की है भजन ते माम। तो ये भक्ति का सूचक है, वो मेरी सेवा में लगे हैं। दृढ़ व्रता, बड़े व्रत धारण करते हैं, क्या व्रत, यत्न करते हैं, प्रयत्नात करते हैं, यत्न करते हैं, नियम पालन करते हैं पक्के। इसमें मुख्य बात एक शब्द है, वो क्या शब्द है, वो शब्द है पुण्य कर्मणा। हमारे जब पुण्य उदय होते हैं तो हमारे पुण्य कब उदय होते हैं कोई पूछे तो एक उसका सिर्फ एक उत्तर है, भजनते सिर्फ तब होगा, भजनते भक्ति का सूचक है, और भक्ति उसी के जीवन में आएगी जिसका पुण्य उदय हुआ है। तो कौन सा पुण्य है जिससे भक्ति मिलेगी, तो उसका अर्थ है भक्त का संग। पुण्य का मतलब भक्त का संग, पुण्य का सही अर्थ है भक्त का संग। जैसे धर्मात्मा लोग हैं पुण्य हुए मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में भक्त का संग मिलेगा तब भक्त बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो भजन नहीं होगा। इसलिए गुरुजन प्रभु ने श्लोक के भाव में लिखा है कि एक प्रभुपाद के संग से हजारों लोगों का दुनिया में भजन करने का रास्ता मिल गया, एक प्रभुपाद के संग से, इसको पुण्य कहते हैं। उनका भाग्य था कि ऐसे भक्त का संग हुआ जिससे उनके जीवन में भजन शुरू हुआ, भक्ति शुरू हो गई, भजन क्रिया शुरू हो गई। आदव श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, पुण्य श्रद्धा पैदा करेगी, तब साधु का संग होगा, तब भजन शुरू होगा, और भजन ते माम का मतलब भगवान की सेवा में लगेगा। तो अब हम इस श्लोक से ये सार ले लें कि हमारे जीवन में कृष्ण भावना अमृत संग में श्री प्रभुपाद के इस आंदोलन में हमको सौभाग्य से प्रवेश मिला है, सौभाग्य से सेवा का शुभ अवसर मिला है। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि हमारा कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है, और बहुत जन्मों के किए हुए साधन पके हुए हैं, तब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तो सीधा सिद्ध होता है, कि जो भगवत गीता यथारूप का सत्संग सुन रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत पुण्य उदय हुए हैं, पाप कलमश नाश हुए हैं, तब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तभी भक्तों का संग मिला है। अब क्या करना चाहिए? अब करना चाहिए भजन, अब प्रयत्न करना चाहिए कि भजन ठीक हो, और यत्न करना चाहिए कि माया कभी भी धोखा दे सकती है, माया से बचने का यत्न करना चाहिए और भजन का प्रयत्न करना चाहिए, ये दोनों काम हमको करने चाहिए। माया, ये हमारी पोजीशन क्या है आजकल कृष्ण भावना में आने की? आपने बचपन में कभी देखा था, वो एक गेम खेलते हैं सांप और सीढ़ी का गेम, देखा है बच्चे खेलते हैं? कभी कभी सात तीन पे खड़े होते हैं और एक सीढ़ी मिलती है और 80 पे पहुंचा देती है। ऐसे हम तो रोड पे घूम रहे थे, किसी ने भगवत गीता दे दी, कोई मंदिर में ले गया प्रसाद खिलाया, हम 80 पे पहुंच गए। अगर सावधान नहीं हुए तो 85 वाला सांप काटा तो फिर 5 पे आ जाए। ये खेल है सांप सीढ़ी वाला, और 98 तक जाएगा, उधर भी अगर लगा कि मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो फिर वो सबसे बड़ा लंबा सांप है, फिर पूछ उसकी बहुत नीचे आ जाएगी। इसलिए बड़ी सावधानी ये है कि सीढ़ी को ढूंढना चाहिए, साधन ये प्रयत्न क्या करना चाहिए, सीढ़ी के पास रहना चाहिए, और यत्न क्या है, सांप से बचना चाहिए, तब घर पहुंचेंगे, परम गति में तब पहुंचेंगे। और सबको थोड़ा थोड़ा सांप भी खाता है, थोड़ी थोड़ी सीढ़ी मिलती है। तो ये बड़ा सावधानी वाला खेल है। तो दो शब्द इसका, ये सांप और सीढ़ी है, कि सांप से बचना है और सीढ़ी का सहारा लेना है, लेकिन इसमें तौकल नहीं है, इसमें साधन से जाएंगे तो भगवान अपने आप में नमे भक्त प्रणश्यति, हमको गिरने से भगवान बचा लेंगे। तो इसलिए ये साधन अब पक्का कर लेना चाहिए जीवन में, ये मौका फिर दोबारा मिलेगा नहीं। ये बहुत बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला और फिर शुद्ध कृष्ण भावना अमृत संघ का साथ मिला है, ये तो मानव जन्म है, सोने की अंगूठी और कृष्ण भावना है इसके अंदर हीरा, अब तो पहन के चमको, अपने जीवन को चमकाओ और अपने जीवन को सफल कर लो, ये बड़े भाग्य से मिला है। मानव जन्म तो मिला, लेकिन ये तो अच्छा है, अंगूठी सोने की है, लेकिन इसमें हीरा मिला है कृष्ण भावना अमृत संघ, ये प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके अनुयायियों की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब सीढ़ी किसको जल्दी मिलेगी? जो ये दूसरों तक पहुंचाएगा उसको सीढ़ी जल्दी मिलेगी, जो इसका प्रचार करेगा उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य प्राप्त होगा, और केवल थोड़ा सुस्त रहेगा तो धीमा धीमा चलेगा, फिर उसका एक एक ऐसे चलेगा, जो प्रचार करेगा वो 6 और 6 और 5 एक बार 17 सीधा ऊपर, तो वो ऐसे भागेगा। तो जो करेगा प्रचार वो चलेगा तेज, और जो करेगा सिर्फ वो धीमा रास्ता वो आस्ते आस्ते चलेगा, लेकिन पहुंच जाएगा, एक जन्म में पहुंचना है, ये भक्ति का साधन है, भगवान हमारा साथ देंगे, इसलिए हमको अच्छी तरह से अब भक्ति को करना चाहिए। ये श्लोक और इसका तात्पर्य समाप्त होता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? ये माम प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती ते, भगवान कहते जो मेरा शरण लेते हैं उनको माया हाथ भी नहीं लगाती है। तो भगवान की शरणागति माया से बचने का एकमात्र साधन है। माया भी है स्त्रीलिंग और भक्ति भी है स्त्रीलिंग, इसलिए भक्ति करते हैं तो माया नजदीक नहीं आती, और ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं तो पुरुष हो जाते हैं, माया पकड़ लेती है। तो ऐसा है ना, कैसे अपोजिट अपोजिट होगा तो दूर भागेगा, और सेम होगा तो दूर। दोनों भक्ति भक्ति को भक्ति क्योंकि भक्ति है अंतरंग शक्ति के अंतर्गत और ज्ञान है सतोगुण में तो ज्ञान है सतोगुण में इसलिए ज्ञान जो है माया के दायरे में है और भक्ति जो है तीनों गुणों से अतीत है इसलिए उसको माया हाथ नहीं लगाती है। भक्ति देवी प्रकृति के आश्रित है, भक्ति जो है अलादिनी शक्ति के आश्रित है और ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है इसलिए भक्ति में तो ज्ञान का भी परित्याग करने के लिए कहा गया। तो कैसे बचेंगे अनन्य भक्ति योग ये ना, अनन्य भक्ति योग करेंगे तो माया से बच जाएंगे। फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं माया को मैं प्रार्थना करता हूं कि कृष्ण के प्रचार के कार्य में हे मां मेरे विघ्न मत डालो। लेकिन हमारे ये नौजवान प्रभुपाद जी कहते हैं ये परवाह नहीं करते हैं माया की इसलिए माया इनको दबोच लेती है इसलिए मैं माया को प्रार्थना करता रहता हूं। तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने माया से हमको बचाइए। ऐसे सुखदेव महाराज जन्म नहीं ले रहे थे, व्यासदेव ने कहा बेटा आप जन्म ले लो मां के गर्भ में कब तक रहोगे, बोला बाहर माया पकड़ लेगी, बोला नहीं पकड़ेगी, बोला कि आपका मानती है माया। व्यासदेव ने कहा नहीं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका था, जाके भगवान श्री कृष्ण को बुला कर लाए और भगवान श्री कृष्ण का सुखदेव अब तो भाई प्रकट हो जाओ, बोला माया, भगवान ने कहा माया मेरी है आपको छुएगी नहीं। तब सुखदेव महाराज संसार में आए। इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण को पुकारते रहेंगे कि हमको माया से बचाओ तो निश्चित रूप से सुखदेव की तरह कहेंगे मेरी माया आपको नहीं छुएगी। तो ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि माया से हमको भगवान बचाए और भगवान आपकी भक्ति। और वैसे भगवान भक्त और भक्ति शुद्ध अवस्था में तीनों माया से परे हैं, ये अंतरंग शक्ति के अंतर्गत होते हैं। लेकिन फिर भी जब तक हम शुद्ध नहीं होते हैं, भक्ति तो शुद्ध है लेकिन हम अभी तक गुणों के अंतर्गत हैं इसलिए माया का प्रभाव होता है। इसलिए तीसरे स्कंद भागवत में कपिल देव भक्ति को भी रजो तमो सत्व गुण के अंतर्गत बताया और गुणातीत भक्ति भी बताई। तो साधन काल में कुछ भक्त तमोगुण वृत्ति के होते हैं, जप भी करते हैं नियम भी पालन करते हैं लेकिन झगड़ा करते हैं, मंदिर में आएंगे झगड़ा करेंगे, वो तमोगुण का प्रभाव है। कुछ रजोगुण के होंगे, वो क्या करते हैं अपनी प्रतिष्ठा का प्रयास करते हैं, मैं ही कीर्तन करूंगा दूसरे को नहीं करने दूंगा, ऐसा उनके मन में भाव आता है, मेरे को मेरा नाम हो या कहां से फायदा होगा दो पैसे का, रजोगुण का भाव होता है ना भक्त होने के बाद भी। सतोगुण के भक्त होते हैं, भक्त होते हैं सतोगुण का भाव होता है, अच्छा वातावरण अच्छा होता है लेकिन फिर भी सुख सुविधा के लिए चेष्टा करते कोई सुख मिल रहना चाहिए इसमें। और जो निर्गुण होते हैं भक्त तीनों गुणों से परे होते हैं उनको तो न झगड़े की जरूरत है न नाम की जरूरत है और न प्रतिष्ठा की और न सुख की, हर हाल में भगवान का स्मरण करते हैं। प्रभुपाद ने वहां लिखा था ऐसे तो 81 प्रकार के भक्त गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं, नौदा भक्ति और तीन गुण। तो ये तो हर एक को तीन तीन से करोगे तो 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, लिखा 81 प्रकार का होता है और फिर भी वैरायटी बहुत है। इसलिए कहा है कि जो तमो रजो गुण में उसको दूर से प्रणाम करना चाहिए। ये रूप गोस्वामी ने भी कहा कि हरे कृष्ण जपता है उसको मन से आदर दो, जिसने दीक्षा ली उसको प्रणाम करो लेकिन जो हृदय में किसी के लिए निंदा नहीं करता है द्वेष नहीं करता है भगवान की भक्ति में लगा रहता है। हरे कृष्ण, ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्ण।